आज है 11 जुलाई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। समलैंगिकता अपराध है या नहीं, केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। समलैंगिक नाखुश,
वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि सारे जो राइट्स एक सिटीजन के पास है वो इस समुदाय के पास आना चाहिए।
राज्यसभा के उपसभापति के पद पर क्या सब पार्टियों में सहमति बन पाएगी, जदयू सांसद हरिवंश।
हम है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक दूसरे के साथ बैठकर काम नहीं करते, इस तरह का प्रयास नहीं करते, तो ये बड़ी अच्छी पहल है अगर बीजेपी ने की है।
राष्ट्रपति ट्रंप और जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल के बीच तूतू मैमे, और दुनिया जहान में सुनिएगा कि दक्षिण कोरिया की तूफानी तरक्की का राज क्या है।
चाहे वो कंपनी के लेवल पर हो या वर्कर के लेवल पर हो, 18-18 घंटे भी रोज काम करने के लिए वो तैयार है अगर कोई टारगेट मीट करना हो।
पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत में आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी मिलाने के मुद्दे और धारा 377 की संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला वो न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र से कहा कि इस दंडनीय प्रावधान की वैधता पर अदालत के फैसला लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में सीबीआई ने बुधवार को बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 4 दिन पहले रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या के मामले में सीबीआई ने विधायक के भाई समेत 5 लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने के चलते इसी साल अप्रैल में पीड़ित लड़की ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके 2 दिन बाद ही मामूली झगड़े में हिरासत में लिए गए पीड़ित लड़की के पिता की कथित तौर पर पिटाई से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया था। आनन फानन में सरकार सख्त हुई और विधायक के भाई अतुल सिंह और उनके कुछ साथी गिरफ्तार किए गए। बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद राज्य सरकार को इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपनी पड़ी और फिर सीबीआई ने 12 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर विधायक कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया।
थाईलैंड में गुफा में फंसे 12 लड़कों और उनके कोच को निकाले जाने के जटिल अभियान को लेकर और जानकारियां सामने आई हैं। बीबीसी को पता चला है कि इन सभी को नशीली दवाएं दी गई थी ताकि वे अर्ध बेहोशी में रहें। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पानी के बहाव और ठंड के कारण वे घबराएं ना। इन बच्चों का अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अस्पताल में सर्जिकल मास्क पहने बिस्तर पर लेटे या बैठे नजर आ रहे हैं। चीन ने अमेरिका पर व्यापार के मामले में दादागिरी करने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि अरबों डॉलर के चीनी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के कारण चीन और बाकी दुनिया के साथ साथ अमरीकी हितों को भी नुकसान पहुंचेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका व्यापार के मामले में एक दादागिरी करने वाले शख्स जैसा व्यवहार कर रहा है। चीन अपने कानूनी अधिकारियों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। ये लड़ाई अकेले चलने और सबको साथ लेकर चलने के बीच है। चीन वैश्विक समुदाय के साथ सही पाले में खड़ा होगा और बहुपक्षीय व्यापार तंत्र को बचाएगा। ये थे चीनी विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्मनी रूस के प्रभाव में है। ब्रसल्स में चल रहे नेटो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई मर्केल ने कहा कि जर्मनी अच्छी खासी संख्या में नेटो के अभियानों के लिए सैनिक भेजता रहा है। जर्मनी में बियत शेपे नाम के एक नवनाजी समर्थक को 10 हत्याओं के लिए ताउम्र जेल की सजा सुनाई गई है। बियत एक ऐसे गैंग में शामिल थे जिसके ऊपर नस्ल भेद के कारण पिछले 7 सालों में कई हत्याएं करने का आरोप है। अफगानिस्तान प्रशासन का कहना है कि जलालाबाद में शिक्षा विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक परिसर पर चरमपंथियों के हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों और घायलों में सरकारी कर्मचारी और स्कूल के अध्यापक शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने कई घंटों के संघर्ष के बाद इन इमारतों पर फिर से नियंत्रण हासिल किया। सऊदी अरब में मुस्लिम धर्मगुरुओं की 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल बैठक खत्म हो गई है। इसमें अफगान तालिबान से अपील की गई है कि वो हिंसा को खत्म करके अफगान सरकार के शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। अफगानिस्तान में शांति के विषय में कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस्लामिक सहयोग संगठन और सऊदी सरकार ने किया था। श्रीलंका की सरकार ने फिर से सजाए मौत पर अमल शुरू करने का फैसला किया है। आखिरी बार 40 साल पहले देश में किसी को फांसी दी गई थी। ये सजा कब से शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। केंद्र सरकार ने कहा है कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए या नहीं, ये तय करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता एक अपराध है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अदालत में चुनौती दी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज इसी सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक संबंधों के अलावा इससे जुड़े किसी और मुद्दे जैसे मानवाधिकार आदि पर विचार नहीं करना चाहिए। दिल्ली से नवीन नेगी की रिपोर्ट।
मंगलवार से शुरू हुई इस सुनवाई में कई तरह की बातें आने के बाद आज केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ से कहा कि समलैंगिकता संबंधी धारा 377 की संवैधानिकता के मसले पर सरकार अपनी तरफ से चुनौती पेश नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक शपथ पत्र दिया। इस पत्र में कहा गया है कि धारा 377 के मामले में क्या फैसला लिया जाए, यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ती है। इसके अलावा सरकार की ओर से हादिया मामले पर कहा गया कि पार्टनर चुनने का अधिकार है, लेकिन ये खून के रिश्ते में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू कानून में इस पर रोक है। अदालत सिर्फ ये देखे कि धारा 377 को अपराध से अलग किया जा सकता है या नहीं। इस शपथ पत्र के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के फैसले पर सरकार खुद निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट में IIT के 20 छात्रों की याचिका का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील प्रीता अय्यर कहती हैं,
उनका स्टैंड तो ये है कि आप 377 के मुद्दे पे आप डिसाइड कर लो, बट यू शुड नॉट गेट इनटू इक्वल राइट। वो आर्गुमेंट जो है, जो लीगली भी गलत है, वो दिखाता है कि वो LGBT समुदाय के खिलाफ ही हैं, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि सारे जो राइट्स एक सिटीजन के पास है वो इस समुदाय के पास आना चाहिए। दैट स्टैंड दे आर नॉट विलिंग टू कंसीड।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी हमें धारा 377 के तहत सहमति से बालिग समलैंगिकों के यौन संबंध अपराध है या नहीं, इसे तय करना है। लेकिन सहमति से बालिग द्वारा बनाया गया यौन संबंध अपराध होना चाहिए या नहीं, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की वकील प्रीता अय्यर ने उम्मीद जताई है कि इस हफ्ते के खत्म होते होते उन्हें कुछ सकारात्मक समाचार जरूर सुनने को मिलेगा।
सारे पेटिशनर्स के साइड जो है कल सुबह तो खत्म हो जाएगा, 2-3 वकील बाकी हैं और चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि रेपिटेशन नहीं होगा, जो पॉइंट्स कवर हो चुके हैं रिपीट नहीं होंगे। हर वकील को अभी 15-20 मिनट मिल जाएगा और नए पॉइंट्स जो है वो पेश करेंगे। पेटिशनर्स के साइड से तो कल 1 घंटे में तो खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट की बारी शुरू होगी। गवर्नमेंट ने तो कहा है कोर्ट जो तय करेगी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उनका लंबा बहस तो होना नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय टीम IPC की धारा 377 को खत्म करने के लिए आई कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। हालांकि सोमवार को केंद्र ने इस सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके विरोध में 30 से अधिक याचिकाएं मिली, जिन पर अब एक साथ सुनवाई हो रही है। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के कारण कई जगहों पर मकान और रास्ते टूट गए हैं। अलग अलग जगहों पर हुई तबाही से अब तक 7 लोगों के मरने की खबर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए खबरदार किया है। नैनीताल से रोहित जोशी की रिपोर्ट।
बुधवार की सुबह देहरादून में हुई तेज बरसात शास्त्री नगर खाला इलाके में रहने वाले भागलपुर बिहार के एक मजदूर परिवार के लिए कहर बनकर टूटी। इनके मकान से सटी हुई एक दीवार के ढहने से सारा मलबा मकान में आ गया और यह हादसा हुआ। इस हादसे में संतोष साहनी, उनकी पत्नी सुलेखा साहनी और 2 बच्चे मारे गए हैं और 2 अन्य घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून के SP City प्रदीप राय ने बताया,
ये सवेरे हमें सूचना आई थी, उन्होंने सूचना आई थी हम लोगों को कि कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और एक और मलबे में वसंत विहार क्षेत्र में 6 लोग दबे पड़े हुए हैं और उसमें से 2 लोगों को निकाल लिया गया, जीवित निकाले गए। 4 लोग उसमें दब गए थे, जो कि डेड बॉडी निकाली गई और इस समय जो 4 डेड बॉडी हैं और जो 2 घायल व्यक्ति हैं दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
इस हादसे के अलावा रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने से देहरादून शहर के अलग अलग इलाकों में 3 लोग नदी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। उधर पिथौरागढ़ जिले के नाचनी में भारी बरसात के चलते रामगंगा नदी का एक पैदल पुल टूट गया है। हालांकि इस दुर्घटना में कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है, लेकिन पुल के टूटने से नदी के दूसरी ओर बसे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। नाचनी में ही एक अन्य हादसे में एक जेसीबी मशीन रामगंगा नदी में गिर गई। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी आरएस राणा ने बीबीसी को बताया,
जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ है, एक डोजर मशीन जो है बह गई थी उसमें, बाकी 12 परिवारों को इवैक्यूएट किया गया है, 100 बच्चों को वहां से इवैक्यूएट किया गया था जो स्कूल में इस्तेमाल रहे हैं।
इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में तेज बरसात की आशंका जताई है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
उत्तराखंड बहुत छोटा है, देखा जाए तो अगर मीटरोलॉजिकल फेनोमेना के लिए कंसीडर करेंगे तो कुमाऊं में बिल्कुल जो आपका पिथौरागढ़ है, नैनीताल है और बागेश्वर है प्लस चंपावत, ये चार डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है जहाँ पे हैवी रेन जो है मिलती, और इसी तरह अगर गढ़वाल की बात करूँ मैं तो उसमें जो है आपको उत्तरकाशी, टेहरी और ये रुद्रप्रयाग रखना पड़ेगा।
मौसम विभाग की ओर से भारी बरसात की इस चेतावनी के बाद स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट में रहने के आदेश दिए हैं। इससे पहले सोमवार की रात को बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में 277 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस भारी बारिश से पूरे इलाके में कई भूस्खलन हुए और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस आपदा में क्षेत्र की एक दर्जन से अधिक सड़कें बाधित हो गई थी और कई मकान भी भूस्खलनों की चपेट में आए।
ये थी नैनीताल से रोहित जोशी की रिपोर्ट।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक तरह का वाक युद्ध छिड़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रसल्स में होने वाले नेटो के सम्मेलन से पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल इयंस स्टोल्टनबर्ग के साथ नाश्ते पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि जर्मनी पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है। इस पर एंगेला मर्केल ने तगड़ा जवाब दिया है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
इस बार नेटो का सम्मेलन काफी हंगामेदार हो सकता है और इसका अंदाजा लगा सम्मेलन से पहले ही अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाराजगी भरे ट्वीट से, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका के मुकाबले इसके बाकी सदस्य देश नेटो पर पैसे खर्च नहीं कर रहे, इन देशों को अमरीका को पैसे देने चाहिए। उनके इस बयान से जर्मनी में खलबली मची है। ब्रसल्स में नेटो सेक्रेटरी के साथ सुबह की बैठक में उन्होंने कहा कि जर्मनी रूस के प्रभाव में है। वो बोले,
We're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries.
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम फ्रांस की रक्षा कर रहे हैं, जर्मनी समेत तमाम देशों की रक्षा कर रहे हैं, और आप बाहर जाकर रूस के साथ अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन का करार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जर्मनी पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में है क्योंकि उसकी 60-70% ऊर्जा जरूरतें रूस से ही पूरी होती हैं। नेटो के लिए ये बेहद खराब है और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में जर्मनी से बात करनी होगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमरीका के इस बयान पर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने जवाब दिया। ब्रसल्स में पहुंचने के साथ ही उन्होंने कहा,
Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe auch selber.
जब जर्मनी के एक हिस्से पर सोवियत संघ का शासन था, मुझे उस दौर का अनुभव है, लेकिन आज हम संयुक्त हैं, स्वतंत्र हैं और जर्मन गणराज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि न सिर्फ हमारी नीतियां स्वतंत्र हैं, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से फैसले भी लेते हैं। ये बेहद अच्छा है, विशेष रूप से पूर्वी जर्मनी के लोगों के लिए।
एंगेला मर्केल के शब्द। मर्केल ने ट्रंप के नेटो सेना में योगदान पर की गई टिप्पणी का भी जवाब देते हुए कहा कि नेटो सेना में हमारा योगदान दूसरे नंबर पर है। अभी भी अफगानिस्तान में जर्मनी के सैनिक भारी तादाद में हैं। जर्मनी और रूस के बीच ये बयानबाजी और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 16 जुलाई को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अभी भी होनी है।
रिपोर्ट बीबीसी संवाददाताओं की, आवाज थी मोहनलाल शर्मा की। दिन भर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। कुछ ही देर में आ रहा है दुनिया जहान, जिसमें आज चर्चा होगी किस तरह दक्षिण कोरिया एक गरीब मुल्क से दुनिया के विकसित देशों की कतार में आ खड़ा हुआ है। लेकिन उससे के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फिलहाल एक बार फिर लौटते हैं भारत की ओर। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच पिछले एक अरसे से खींचतान चल रही है। दोनों खेमों में किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। भाजपा ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति का चयन सर्वसम्मति से होना चाहिए। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यह चुनाव टाला जा सकता है। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने राज्यसभा के उपसभापति को लेकर आपस में चर्चा की। ये बैठक राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के घर पर हुई, मगर चर्चा के दौरान कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। पार्टी का मानना है कि ऊपरी सदन के उपसभापति को लेकर आम सहमति होनी चाहिए। एनडीए के घटक दलों में से एक शिरोमणि अकाली दल भी है, जिसके सांसद नरेश गुजराल के नाम की चर्चा की जा रही है, मगर अभी तक उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश कहते हैं,
लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज है कि पक्ष और विपक्ष बैठकर बात करें और काम करें, पर दुर्भाग्य से भारत में वो परंपरा खत्म हो गई। तब दूरी इतनी बढ़ गई है पार्टियों में, हम हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक दूसरे के साथ बैठकर काम नहीं करते, इस तरह का प्रयास नहीं करते, तो ये बड़ी अच्छी पहल है अगर बीजेपी ने की है।
भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन कहती हैं कि जरूरी नहीं है कि उपसभापति चयन चुनाव की प्रक्रिया से ही किया जाए।
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट अगर कॉन्टेस्ट मना भी नहीं करती है, अगर है तो कॉन्टेस्ट हो सकता है। 19 करीब आ गया है, चुनाव आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो इसमें जो बैटल लाइंस इतने क्लियर हैं कि कंसेंसस की कोई संभावना नहीं है, और बल्कि इतनी संभावना भी नहीं है कि लेफ्ट तृणमूल के कैंडिडेट को सपोर्ट करने से मना कर रही है। हमें देखना है कि जो अनअटैच्ड पार्टीज है, जैसे बीजेडी, टीडीपी तो एनडीए को बिल्कुल नहीं वोट करेगी, पर क्या वो कांग्रेस के कैंडिडेट या तृणमूल होगा तो तृणमूल के कैंडिडेट के लिए वोट कर सकती है।
राजनीतिक विश्लेषक उर्मिलेश कहते हैं कि राज्यसभा में सीटों का गणित किसी के भी पक्ष में नहीं है।
जब हाउस में अपोजिशन और सत्ताधारी दल दोनों के बीच में काफी फर्क होता है संख्या का, तब आमतौर पे क्लेम नहीं किया जाता है कि वाइस चेयरमैन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अमूमन स्थिति में जो रूलिंग पार्टी है वो अपना वाइस चेयरमैन भी बनवा लेती है, लेकिन जब स्थितियां ऐसी ना हो, मिक्स हो, जैसे आज की स्थिति में है कि कोई ये नहीं कह सकता कि पूर्ण बहुमत कौन कमांड कर रहा है, तो वैसी स्थिति में वाकई ये दिलचस्प हो गया है इलेक्शन, ऐसा नजारा कभी मिलता है।
संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है जो 20 अगस्त तक चलेगा, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति को लेकर राजनीतिक गर्मियां भी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष, सभी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मगर क्या मौजूदा राजनीतिक माहौल में राज्यसभा के उपसभापति के चयन को लेकर आम सहमति बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। मैं हूं राजेश जोशी और आज है बुधवार, समय है दुनिया जहान का। आज चर्चा दक्षिण कोरिया की, जहां के राष्ट्रपति मून जे इन 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। इस दौरान दक्षिण कोरिया की तरक्की की तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी। सन 1948 में आज़ाद हुआ यह देश आकार और आबादी के लिहाज से बेहद छोटा है, लेकिन विकास के पैमाने पर इसने कई कीर्तिमान रच दिए हैं। सिर्फ 6 दशकों में दक्षिण कोरिया एक गरीब मुल्क से विकसित देशों की कतार में कैसे पहुंचा, दुनिया जहान में इस बार वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान। पूरी दुनिया मई के आखिरी हफ्ते में जब उत्तर और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों के बीच दूसरी मुलाकात के मायने तलाश रही थी, कोरियाई पॉप के दीवाने एक अलग इतिहास रचे जाने की खुशी में डूबे थे। उस हफ्ते दक्षिण कोरिया के पॉप ग्रुप बीटीएस का म्यूजिक एल्बम अमरीकी पॉपुलरिटी चार्ट में पहले नंबर पर था। ये 12 साल में पहला मौका था जब कोई ऐसा एल्बम अमेरिका में धूम मचा रहा था जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं थी। कूटनीतिक व्यस्तताओं के बीच भी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन बीटीएस ग्रुप को बधाई देना नहीं भूले, लेकिन ये कामयाबी कोई अजूबा नहीं। ओपन गंगनम स्टाइल। कोरियाई गायक साई के गंगनम स्टाइल वीडियो ने भी इतिहास रच दिया था। एक वक्त ये YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो था। दक्षिण कोरिया की बादशाहत का मामला सिर्फ कोरियाई पॉप यानी के पॉप तक ही सीमित नहीं है। साल 1948 में आजादी पाने और 1953 तक उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष में उलझा रहा ये मुल्क तकनीक और विकास के कई पैमानों पर भी अव्वल है। कई क्षेत्रों में ये ताकतवर पश्चिमी देशों को टक्कर दे रहा है। साल 2008 से 2011 तक दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत रहे स्कंद रंजन तायल इसे कोरियाई लोगों के जीवट से जोड़कर देखते हैं।
कोरिया के लोगों में एक पैशन है, एक आग है उनको कि जो वो करते हैं वो पूरे अपनी ताकत से करते हैं, लगन से करते हैं।
इस जुनून का असर आंकड़ों में भी दिखता है। जहाज यानी शिप और कंप्यूटर चिप बनाने में ये मुल्क पहले पायदान पर है। मोबाइल निर्माण के लिहाज से दूसरे और कार बनाने में पांचवें नंबर पर है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित है। यहाँ की कंपनियां पूरी दुनिया में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन और कारें निर्यात कर रही हैं। निर्यात में वो दुनिया में सातवें नंबर पर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को नोएडा में कोरियाई विकास की इस गाथा का बखान किया।
एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, भारत में ही शायद ही ऐसा कोई मिडिल क्लास फैमिली होगा, मिडिल क्लास घर होगा, जहां कम से कम एक कोरियाई प्रोडक्ट वहां नजर ना आए, ऐसे शायद ही कोई परिवार हो।
विकास की ये कहानी जादुई लगती है तो इसकी वजह ये है कि आकार में दक्षिण कोरिया भारत के राज्य गुजरात से भी छोटा है। इसकी आबादी 5 करोड़ से भी कम है। ये 1945 तक जापान की गरीब कॉलोनी था और आजादी के बाद भी तमाम मुश्किलें इसे घेरे रहीं। उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। 1960 के दशक तक इसकी 72% आबादी गांवों में थी और अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। फिर उसने तकनीक, आईटी और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बेमिसाल कामयाबी कैसे हासिल की? इस सवाल का जवाब देते हैं डॉक्टर रामा सुंदरम, जो साल 2006 से दक्षिण कोरिया में है।
कोरियाई लोग हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। यहाँ का विकास नेताओं और देश के लोगों के साझा प्रयास का नतीजा है। जब भी आप कोरियाई लोगों से बात करें तो वो कहते हैं वूरी नारा, जिसका मतलब है मेरा देश।
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव कुछ महीने पहले दक्षिण कोरिया में थे। उन्होंने तकनीक और आईटी के क्षेत्र में इस देश की तरक्की को करीब से देखा।
कोरिया की जो मजबूती है वो इस बात से निकलती है कि वहाँ पर काम करने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। सोल में और तमाम जिन शहरों में हम गए वहाँ पर हमें दर्जनों लोग ऐसे मिले जो रोज़ 12 से 14 घंटे काम करना उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
कोरिया में राजदूत रहे तायल का आकलन है कि आर्थिक मोर्चे पर मिली तरक्की की कई वजह हैं। वो कहते हैं कि कोरिया ने आज़ाद होने के बाद शिक्षा पर बहुत काम किया।
पूरा देश किसी तरह एक डायरेक्शन में काम करता है। पहले तो जबरदस्ती करता था क्योंकि कुछ प्रजातंत्र वहाँ था नहीं, और शुरू में तो उन्होंने बहुत मुसीबतें झेली और ना कोई ह्यूमन राइट्स थे, ना कोई डेमोक्रेसी थी, और पूरा ना कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, ना प्रेस था। तो एक जनरेशन ने बहुत दुख उठाया, ज्यादा मेहनत की, और बाद की जनरेशन ने उसका लाभ उठाया।
स्कंद रंजन तायल ये भी कहते हैं कि जिस दौर में दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र नहीं था तब भी नेता देश की प्रगति के बारे में ही सोचते थे।
उस देश ने तरक्की बहुत की क्योंकि वहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी नहीं थी। जो वहाँ के नेता थे पाक चुंगी, स्विस बैंक में अकाउंट वकाउंट नहीं रखते थे। वहाँ पे चेंजेस जब आई तो फिर एक सब लोगों में कुछ करने की इच्छा है, चाहे वो कंपनी की लेवल पर हो या वर्कर की लेवल पर हो। 18-18 घंटे भी रोज काम करने के लिए वो तैयार हैं, अगर कोई टारगेट मीट करना हो।
दक्षिण कोरिया में बदलाव की शुरुआत हुई तो इस मुल्क की छवि कॉपीकैट यानी नकल करने वाले देश की थी। हालांकि वहां के नीति निर्माताओं को ऐसी इमेज को लेकर कभी परेशानी नहीं हुई। रिसर्च के काम में जुटे डॉक्टर रामा सुंदरम कहते हैं कि कोरिया ने नकल और नए प्रयोगों को विकास का नारा बना दिया।
किसी दूसरे विकसित देश में अगर कोई तकनीक है तो यहाँ उसी तरह की तकनीक विकसित करने की कोशिश की जाती है, उस समय तक जब तक कि वो खुद की तकनीक न विकसित कर लें। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक किताब जारी की है, अगर आप उस किताब को देखें तो उसमें कहा गया है इमिटेट एंड इनोवेट। ये विकास के लिए कोरिया का नारा है।
दक्षिण कोरिया में नई तकनीक विकसित करने पर बहुत जोर है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कुल 4% हिस्सा तय है। डॉक्टर रामा सुंदरम,
कई संस्थान और कई प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, वो कंपनियों को तकनीक देते हैं। यकीनन रिसर्च और डेवलपमेंट से कोरिया के विकास में मदद मिल रही है।
20वीं सदी के आखिरी दशक तक कोरिया आर्थिक मोर्चे पर लंबी छलांग लगा चुका था, लेकिन साल 1997 की मंदी ने उसे दिवालिया होने की कगार पर ला दिया। दक्षिण कोरिया ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मदद मांगी। उसे दिसंबर 1997 में $58 अरब का बेलआउट पैकेज मिला। कर्ज में डूबे अपने देश को बचाने के लिए कोरियाई लोग आगे आए और सोना जुटाने की मुहिम शुरू की।
वहाँ पे बुढ़िया लेडीज आके अपने अपने गहने, बिल्कुल गरीब औरतों ने आके अपने गहने, वेडिंग रिंग्स, उनके पास कुछ भी नहीं था, लाखों वेडिंग रिंग्स लेके बस आ गई कि सब देश को जरूरत है और उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी।
एक मुल्क की एकजुट कोशिश का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में सोने का भाव कम हो गया। जमा हुए सोने की कीमत करीब $2.2 अरब थी, जो कर्ज के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन लोगों ने जो जज्बा दिखाया, उसने दक्षिण कोरिया की तकदीर बदलने की गारंटी दी। तय वक्त से करीब 3 साल पहले यानी साल 2001 में दक्षिण कोरिया ने IMF का लोन चुका दिया। तब से इस देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। डॉक्टर रामा सुंदरम कहते हैं कि तरक्की के तमाम मुकाम हासिल करने के बाद भी कोरियाई लोगों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े जतन से संजोया है।
वो अपनी संस्कृति को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम विदेशी विश्लेषक कहते हैं कि पहनावे के आधार पर वो पश्चिमी देशों के लगते हैं, लेकिन दिल से वो 100% कोरियाई हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आपको कोरियाई डिश किमची मिलेगी। अपने हर त्योहार में वो एक गाना गाते हैं,
दक्षिण कोरिया एक दशक पहले ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देशों के क्लब में शामिल हो चुका है, लेकिन कई चुनौतियां अब भी सामने हैं। आबादी छोटी है और एक हिस्सा तेजी से उम्रदराज हो रहा है। तकनीक के विकास और निर्यात में चीन से कड़ी चुनौती मिलने लगी है, लेकिन फिर भी दक्षिण कोरिया को भरोसा है कि विकास का उसका पहिया थमेगा नहीं। उसे चुनौतियों को चित करने का हुनर आता है।
उम्मीद है दुनिया जहान का यह अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। और एक नज़र अब खेलों की दुनिया पर। सामने मेरे सूर्यांशी पांडे बैठी हुई हैं और वो बताने जा रही हैं कि विश्व कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में क्या होने वाला है। आप ज्योतिषी तो नहीं हैं, लेकिन बताइए कि आज किसका मुकाबला
और ना ही विशेषज्ञ, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि समाचार पहुंचा सकते हैं। और खेल का समाचार यही है कि आज सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है क्रोएशिया और इंग्लैंड के बीच, जिसके अंदर जो क्रोएशिया है वो दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है फीफा विश्व कप में, तो वहीं जो इंग्लैंड है वो तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है। लेकिन अगर इन दोनों का मुकाबला देखा जाए तो ये लोग 7 बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 4 बारी इंग्लैंड जीती है और 2 बारी जो है क्रोएशिया जीती है और 1 बारी मैच ड्रॉ हुआ है। इसका मतलब कि पलरा अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लैंड का भारी है,
लेकिन धड़कने तो आज सांसत रहेगी, सांस अटकी रहेगी।
और ये भी बताना बेहद जरूरी है कि 1966 में इंग्लैंड ने अपना विश्व कप जीता था पहली बार, बल्कि क्रोएशिया ने आज तक अपना फीफा विश्व कप नहीं जीता है।
वैसे आप देख रही हैं क्या फुटबॉल?
हाँ बिल्कुल,
रात को जग के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ अगर खबरें हैं तो जल्दी से बता दीजिए।
भारतीय, ये क्रिकेट की खबर है, भारतीय महिला टीम के कोच तुषार अरोठे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि टीम के कुछ स्टार खिलाड़ियों के साथ कथित मतभेदों के बाद उन्होंने कदम उठाया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी। और अब चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। BBC समाचार। भारत में आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2 वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाने के मुद्दे और धारा 377 की संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला वो न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में CBI ने बांगरमऊ से BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चीन ने अमरीका पर व्यापार के मामले में दादागिरी करने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि $अरबों के चीनी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाने की ट्रंप प्रशासन की योजना चीन और बाकी दुनिया के साथ साथ अमरीकी हितों को भी नुकसान पहुंचाएगी। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्मनी रूस के प्रभाव में है। ब्रसल्स में चल रहे नेटो सम्मेलन में हिस्सा लेने आई मर्केल ने कहा कि जर्मनी अच्छी खासी संख्या में नेटो के अभियानों के लिए सैनिक भेजता है। BBC समाचार। मुख्य समाचार आपने सुने आदर्श राठौर से। आज स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान और कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की अनंत प्रकाश ने। मैं राजेश जोशी अब अपने सभी साथियों की ओर से आपसे विदा चाहता हूं। अगली मुलाकात होगी हमेशा की तरह भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।